स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा।
मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके आप सभी नियमित श्रोताओं का और साथ में उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले दिनों में हमने इस अध्ययन में देखा है कि परमेश्वर हमें बुद्धि के द्वारा से आह्वान कर रहे हैं ताकि हम व्यभिचार से, संसार की बुराइयों से अपने आप को बचा लें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय से हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। इस समय जब हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, इस पर विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक जो आपके वचन में से सुनता है आपकी आशीषों को ग्रहण कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके लिए कोई आशा नहीं है, वे भी आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशा को देखने पाए। हाँ प्रभु, आप प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे श्रोता मित्रों, आप मेरे साथ नीति वचन अध्याय 8 निकाल लीजिए और हम पद 5 से पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 8 और 5 पद लिखा है, हे भोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खों अपने मन में समझ लो, क्या आप कहेंगे कि आप अधूरे हैं या आप पापी हैं और आपके साथ बौद्धिक समस्याएं नहीं हैं? कभी कभी मनुष्य को बौद्धिक समस्याओं का उल्लेख करते सुनना हास्यास्पद होता है और लगता भी है। मुझे एक युवक ने कहा, उसे बाइबल में बौद्धिक समस्या होती है। आप जानते हैं कि उसकी वास्तविक समस्या क्या थी? वह अपने पाप से मन फिराना नहीं चाहता था। मैंने तो यही देखा है कि यदि किसी को पाप की समस्या है और वह मसीह के पास उस समस्या को लेकर आ जाए तो अति विस्मयकारी रूप से वह बौद्धिक समस्या दूर हो जाती है। नीतिवचन 8 उसके 6 पद में लिखा है, सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। यह कैसा अद्भुत चित्रण है जो बुद्धि हमसे कहती है। नीतिवचन 8 उसके 7 और 8 पद में लिखा है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह के सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती। मेरे मित्रों, बाइबल में गलतियां और समस्याएं खोजने वाले बहुत हैं। अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं और मैं समझ सकता हूं कि बौद्धिक मनुष्य के लिए बाइबल में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मैंने अध्ययन आरंभ किया तब मुझे आज भी समस्याएं हैं, परंतु समस्या परमेश्वर के वचन में नहीं है, समस्या मनुष्य के मन मस्तिष्क में है। परमेश्वर कहता है कि बुद्धि के वचनों में ना तो कुछ जटिलता है और न ही भ्रष्ट बातें हैं। नीतिवचन 8 उसके 9 पद में लिखा है, समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं। देखिए, बुद्धि सीधी और सहज होती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने सुसमाचार केवल बुद्धिमानों को ही नहीं दिया। यदि वह ऐसा करता तो अधिकांश मानव जाति सुसमाचार से वंचित हो जाती। यह सीधे लोगों के लिए संदेश है और सुबोध संदेश है। यह एक रोचक बात है कि जिसे मनुष्य सुसमाचार में गहरी और गूढ़ बात कहता है वह वास्तव में वैसी है ही नहीं। जब मैं बाइबल स्कूल में गया तो सोचता था कि मैं अन्य विद्यार्थियों से कहीं अधिक जानता हूं। हमारी सेमिनरी में एक बुद्धिमान शिक्षक पढ़ाने के लिए आया करते थे और मैं आपसे सच कहता हूं कि उसकी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी। मैंने एक बुद्धिमान शिक्षक से कहा कि मुझे तो उसकी कक्षा में कुछ भी समझ नहीं आता है। मैं सोचता था कि मैं कुछ भी समझने की बुद्धि रखता हूं, परंतु इस शिक्षक की बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। मैं उनका उत्तर कभी नहीं भूलता हूं। मेरे भाई, जब पानी निर्मल हो तो आपको 7 फुट नीचे तालाब तक दिखाई देता है, और जब पानी गंदा हो तो सड़क पर आपके जूतों का निशान भी नहीं दिखता है। कुछ लोग गहरे नहीं, गंदे होते हैं। मुझे अपना उत्तर मिल गया था। मेरे प्रियो, यदि बाइबल में आपके लिए बौद्धिक समस्या है तो समस्या बाइबल में नहीं, आप में है। मैं आपको नए नियम का एक संदर्भ देता हूं जो गूढ़ प्रतीत होता है परंतु है अति सुबोध। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज में अंत को ना देखें, परंतु वे मति मंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है पर मसीह में उठ जाता है। अब आप सोचेंगे कि हृदयों पर पर्दा पड़ा रहने के कारण वे समझ नहीं पाते थे, इसलिए उनसे लेखा नहीं लिया जाएगा। आज भी अनेक जन कहते हैं कि उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा है, इसलिए वे बाइबल समझने में असमर्थ हैं। अब आगे का पद सुने। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, जब उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। देखा आपने, समस्या मस्तिष्क की नहीं है, मन की है। हम अपने आज के जीवन को देखें, यह कभी न कहें कि आपकी बौद्धिक समस्याएं आपको प्रभु यीशु से दूर रखती हैं। समस्या आपके जीवन में उपस्थित पाप की है। आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। आप अपना सिर झुकाकर और मन को दीन बनाकर प्रभु यीशु के पास नहीं आना चाहते हैं। आपकी समस्या यही है। ध्यान दीजिए कि जब आपका मन प्रभु के पास आ जाता है तब एक अद्भुत बात होती है, पर्दा हट जाता है, समस्याओं का समाधान होता है। मध्यकालीन युग के एक महापुरुष ने कहा, मसीह के पास आने तक मुझे बहुत समस्या थी। हम कहेंगे कि उसकी समस्या बौद्धिक थी, जी नहीं, वे मन की समस्याएं थी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, सुसमाचार ऐसा सुबोध है कि वह गलत समझा ही नहीं जा सकता है। यह अवश्य हो सकता है कि जानबूझकर और अपनी इच्छा से सुसमाचार का विरोध किया जाए, यह मन की समस्या है। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिक्रिया से पता चलता है कि विश्वासी का मन कहाँ है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अभिव्यक्तियां धार्मिक हैं और शब्दावली रूढ़िवादी है, परंतु वे मृतक के समान हैं। वे परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि मुझे वचन का विरोध करने वालों को सुधारना चाहिए। मैं कहता हूं कि मेरा काम वचन सुनाना है, उनसे व्यवहार करना परमेश्वर का काम है। मैं अपने सेवा काल में देख चुका हूं कि परमेश्वर उनके साथ कैसा न्याय करता है। वह उनके परिवार में घुसकर उनका न्याय करता है। जी हाँ, मैं एक हठी युवक को जानता हूं जो परमेश्वर के वचन का विरोधी था। वह अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ भाग गया। उसके जीवन का यह पाप उसकी समस्या था। मैं इस बात पर बल देता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट एवं निर्मल है, उसमें कुछ भी उलटफेर या कुटिलता नहीं है। नीति वचन 8 अध्याय के 10 पद में लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। जब आप और मैं अय्यूब के समान उस स्थान पर आ जाते हैं कि अपना जीवन सीधा करें, अपनी प्राथमिकताओं को यथा स्थान रखें, इस संसार में तुलना करके देखें कि बुद्धि अनमोल रत्नों में अधिक कीमती है, तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 पद में, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ, प्रभु चाहता है कि हम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें तो हमारे जीवन की हर एक जरूरतें मुझे और आपको मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि बुद्धि युवाओं को पुकारती है। बुद्धि मूल्यवान वस्तुओं से अधिक कीमती है। अब हम बुद्धि के गुण को देखेंगे। नीति वचन 8 उसके 12 पद में लिखा है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि बुद्धि एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु का व्यक्तित्व है। नीति वचन 8:13 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। आज के युग में यह सच है, यह हमारे जीवन स्तर पर है। बुद्धि प्रकट की जाती है कि यह परमेश्वर का गुण है और प्रभु यीशु में यह प्रकट है। परमेश्वर घमंड, अहंकार, बुरी चाल और उलट फेर की बातों से घृणा करता है। यदि हम उसके हैं तो हम भी इन बातों से घृणा करेंगे। नीति वचन 8 उसके 14 से 16 पद में लिखा है, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। मेरे मित्रों, भजनों में और दानियल की भविष्यवाणी में बार बार कहा गया है कि सर्वशक्तिमान मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे देता है। यह जानना कैसी महान बात है कि परमेश्वर सांसारिक मामलों पर प्रभुता रखता है और उसकी इच्छा पूरी करता है। वह मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है। नीति वचन 8 के 17 पद में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। सुलेमान ने अपने जीवन में शीघ्र ही यह बात सीख ली थी। उसने देखा कि परमेश्वर से मांगने पर उसे बुद्धि मिली थी। राजा बनते ही उसने परमेश्वर की खोज की। वह जानता था कि परमेश्वर ही ने उसे बेजोड़ बुद्धि दी है। परमेश्वर हमें भी वही बुद्धि देगा यदि हम उसकी शर्तें पूरी करेंगे। हमारे मसीही जीवन के आरंभ से ही परमेश्वर के वचन का यत्न से अध्ययन और उससे प्रेम करें। नीति वचन 8 उसके 18 और 19 पद में लिखा है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास हैं, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी हैं। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। वे धन संपदा नहीं है, ये उसके अद्भुत आत्मिक वरदान है। मेरे प्रियो, हम नीति वचन 8 उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं, मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। मसीह यीशु बुद्धि है। मेरे विचार में अब से आगे आप यह मानकर चलेंगे कि मसीह यीशु ही यह बात कह रहा है। नीति वचन 8 के 22 में लिखा है, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। यह प्रभु यीशु जो साक्षात बुद्धि है। नीति वचन 8 के 23 में हम पढ़ते हैं, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। सदा से ठहराई गई अर्थात अभिषेक किया गया, यह यूहन्ना का कथन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वह परमेश्वर के साथ एक ही तत्व था, एक ही प्रकृति था। अनादि काल में वह स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर और प्रभु यीशु दोनों एक ही थे, उसका आरंभ नहीं है। आदि में वचन था। देखिए, वह आदि में ही भूतकाल था। केवल वही हमें स्पष्ट समझा सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 27 पद में वह कहता है, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता। हम प्रभु यीशु को नहीं जान सकते थे यदि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नहीं भेजा होता कि हमारे मन को खोले। उद्धार पा लेने वाला प्रभु यीशु में विश्राम पाता है और स्तुति करता है। हम आज अविश्वास के युग में वास करते हैं। शंकाओं को, शंका में जीने दो। मेरे मित्रों, हमारा प्रभु यीशु से व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ संबंध है और वह वचन है। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह अति महान कथन है। हम आगे देखते हैं, बुद्धि प्रभु यीशु ही है। नीति वचन 8 अध्याय उसके 24 से 27 पद में लिखा हुआ है, जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। ध्यान दीजिए, यूहन्ना 1 अध्याय के 3 पद में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। वैज्ञानिक पहले कहते थे कि ब्रह्मांड चौकोर है, परंतु परमेश्वर ने यही कहा है कि वह गोल है। हमारा संसार गोल है और हम सौर मंडल में चक्कर काट रहे हैं। हमारी आकाश गंगा भी गोल है। ये सब गोल वस्तुएं गोल गोल घूम रही हैं। हम नीति वचन 8 उसके 28 और 29 पद में पढ़ते हैं, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी उसके पार क्यों नहीं जाता है? वह वहीं क्यों रहता है? यहां लिखा है, उसने समुद्र की सीमा ठहराई है कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके। परमेश्वर ने यह बनाया है कि समुद्र वहीं तक रहे, उससे आगे न बढ़े। नीति वचन 8 उसके 30 और 31 पद में लिखा है, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। प्रभु यीशु के बिना कोई भी सृजित वस्तु नहीं बनी थी। सब कुछ उसी ने बनाया था। वह संपूर्ण सृष्टि से पूर्व का है। वह सबसे वरिष्ठ था। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। वह असृजित परमेश्वर है। वह प्रतिदिन उसकी प्रसन्नता था। ये सब आनंद और प्रसन्नता के कारण परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से हमें मिलते हैं। यह सब कुछ कैसा अद्भुत है। नीति वचन 8 उसके 32 और 33 पद में लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य हैं वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। बुद्धि प्रभु यीशु है जिसके लिए प्रेम आवश्यक है। नीति वचन 8 34 और 35 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरे सुनता वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यह वह उससे प्रसन्न होता है। जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। जी हाँ, यीशु को पा लेना या यीशु को पाना जीवन को पाना है। क्योंकि हम पाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु को ग्रहण करने से वह उद्धार को प्राप्त करता है। हम नीति वचन 8 उसके 36 पद में पढ़ते हैं जो इस अध्याय का अंतिम पद है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु से घृणा करते हैं तो आप मृत्यु से प्रेम करते हैं। कैसा अद्भुत चित्रण है। बुद्धि प्रभु यीशु है। आज आपके लिए अवसर है कि आप बुद्धि अर्थात प्रभु यीशु को ग्रहण करें, अन्यथा त्याग दें। यहाँ पर बताया गया है कि हम उसे घृणा करते हैं तो हम मृत्यु से प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, आज हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को आमंत्रित करें। प्रभु से कहें कि आप मेरे जीवन में आइए, मेरी सहायता कीजिए। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हटके हो तुम, खोए हो तुम, दिल में गर तुम उदास हो, थके हो तुम, निराश हो तुम, यीशु के पास आ जाओ। यीशु ने हमें पाप से छुड़ाया है, उसके ही नाम से हमेशा हमें विजयी बनाया है। ईश्वर का पुत्र यीशु ने हमें पाप से छुड़ाया है, उसके ही नाम से हमेशा हमें विजयी कहा। जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा।